यदन्नः पुरुषो भवति। राम जी वनवासी हैं, वनवास के नियमों में हैं, वे कंदमूल फल का आहार करते हैं, इसलिए अपने पिता दशरथ को वे अन्न का पिंड नहीं दे सकते, चावल का पिंड नहीं दे सकते, क्यों खुद फलाहारी हैं, इसलिए फलाहार ही जंगली कंदमूल फल से ही उनको पिंडदान आदि संपन्न करना होगा, ये उसका तात्पर्य। और फिर अनेक जगह ऐसा भी वर्णन है, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम पंचवटी का निर्माण करो, पर्णकुटी का निर्माण करो। तो पंचवटी में लक्ष्मण जी ने पर्णकुटी का निर्माण किया और उसको देख करके राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और राम जी ने कहा कि इसका वास्तु पूजन भी कराओ। राम जी मर्यादा का पालन करते ना, कोई नया बनाओ तो कुछ न कुछ पूजा पाठ होना चाहिए। वास्तु पूजन आदि कराया तो उसमें लिखा है रोरून गोधान मृगान हत्वा, रुरु नामक गोधा नामक जो जीव हैं उनको हत्वा, उनको मार करके वह स्त्री संपन्न की गई। तो अब वहां विचार करना पड़ेगा कि जो अपने पिताजी के पिंडदान के लिए अन्न का भी प्रयोग नहीं करते, इंगुदी नामक फल के चूर्ण चूर्ण से बनाकर पिंडों का प्रयोग करते हैं, वे श्री राम जी क्या लक्ष्मण जी को आज्ञा दे सकते हैं कि मृगों का वध करके उससे कोई पूजा की विधि संपन्न करो। तो वहां विदारी कंद और जिमी कंद को रोरू और गोधा कहा गया है, विदारी कंद और जिमी कंद। राम जी कह रहे हैं ये कंद उखाड़ करके ले आओ और इन कंदों से देव पूजा संपन्न करो। अब आज के पढ़े लिखे लोगों ने सीधे घोषणा कर दी, बोले राम जी के राज्य काल में मांस खाया जाता था। अरे भैया भगवान भले आदमी, ये मांस खाना राक्षसों का काम है, मनुष्य का कार्य नहीं। तो इसलिए हमारे पुराणों के तात्पर्य को भी समझना बड़ा कठिन काम है। ऐसे जहां वाक्य आए हैं उन वाक्यों का ठीक ठीक अर्थ लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, उनकी पूर्वापर संगति देखनी चाहिए, केवल किसी एक अंश को देख करके अर्थ निश्चित नहीं करना चाहिए। और जब हम इसी प्रकार से वेद, इसी प्रकार से पुराण, इसी प्रकार से स्मृतियां जब हम देखते हैं और विधि परक वाक्य और निषेध परक वाक्य दोनों को जब अपने ध्यान में रखते हैं, तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां विधि परक वाक्य ऐसे आए हैं उनका तात्पर्य विधि में ना होकर निषेध है, अथवा जहां कहीं ऐसे वाक्य आए हैं उनका अर्थ कुछ दूसरा ही है। तो आज संस्कृत भाषा, क्या शब्द कहें, हमारे शब्द नहीं आ रहा है। आज संस्कृत भाषा का ऐसा क्षरण हो रहा है, संस्कृत ज्ञान का ऐसा लोप हो रहा है कि ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो चल रही है गाड़ी जैसे तैसे। आचार्य पास विद्यार्थी से, सबकी बात हम नहीं कह रहे हैं, वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है, आचार्य पास विद्यार्थी से यह पूछा जाए आचार्य शब्द कैसे निष्पन्न हुआ तो नहीं बता सकता। अरे तुम आचार्य हो, आचार्य शब्द कैसे बना ये तो बताओ। शास्त्री माने क्या होता, आचार्य माने नहीं जानता, तो झूठी डिग्री किस काम में आएगी। एक अब तो मौखिक प्रश्न पत्र जगह जगह होने लग गए, आचार्य अंतिम वर्ष में एक मौखिक प्रश्न पत्र भी होता है, पहले आचार्य मौखिक वाराणसी में ही होता था। देख विद्यार्थी गए, रूप तो बड़ा भव्य था उनका पंडित जी का, पर श्रम नहीं किया था अध्ययन में। तो धर्म संघ वाले गुरु जी ने कहा कि तुम कैसे उत्तीर्ण हो गए, बोले गुरु जी आपके चरणों की कृपा से उत्तीर्ण हो जाए। लौट के आए, तो गुरुजी ने पूछा कि कहो तुमसे क्या पूछा। बोले महाराज पहले तो वो संस्कृत में बोलने लगे तो हम कुछ बोले नहीं, चुप हो गए। उन्होंने कहा अरे बोलता क्यों नहीं भाई। तब हमने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी अपराध क्षमा करना, इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सो आप कृपा करके राष्ट्रभाषा में बातचीत करें। अब हिंदी में पूछने लगे तो कहा गुरुजी आपकी कृपा से वैसे तो हमको सब आता है, पर आश्चर्य है जो हमें तैयार नहीं वही आप पूछते हैं, बस इसको छोड़कर और सब आता है। ऐसे हर प्रश्न में यही कहे। अंत में पूछने वाले ने कहा कि ऐसा करो 14 सूत्र सुना दो अय्यो नरेंद्र का आदि। उसको ठीक से 14 सूत्र भी याद नहीं थे। उसने कहा गुरुजी व्याकरणाचार्य के छात्र से, अंतिम वर्ष के छात्र से आप इतना छोटा प्रश्न पूछेंगे, इसमें तो आपकी भी बेइज्जती है और हमारे जैसे स्नातक की भी बेइज्जती है, और फिर आपको 14 सूत्र तो याद है ही, हमें पक्का विश्वास है। अरे बोले मूर्खानंद कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कितने प्रश्न पत्र है, कौन कौन विषय था ये तो बता दे। बोले गुरु जी सब भूल गया, लिख तो सब आया हूं, स्मृति थोड़ी सी कमजोर है, बाकी तो सब ठीक है। बोले अच्छा फिर ये बता तू पास कैसे होगा, जब कुछ तेरी तैयारी नहीं है और मौखिक परीक्षा है, पास कैसे होगा। बोले जैसे ही उन्होंने कहा तू पास कैसे होगा, तुरंत साष्टांग चरणों में पड़ गए और रोने लगे, गुरुजी आपके चरणों की नौका का सहारा लेकर इस मौखिक परीक्षा रूपी वैतरणी को पार कर जाऊंगा। महाराज गुरुजी आपके हाथों में भाग्य है हमारा, हम गरीब ब्राह्मण हैं, कृपा कर दो। तो बोले उन्होंने कहा चलो ठीक है पास कर देते हैं जाओ। बोले महाराज गुरुजी हमसे तो ऐसे ही कह दिया कि हम पास कर देते हैं, पता नहीं पास किया कि नहीं किया, पास हो गया। तो गुरुजी खूब आनंद लेते थे उस विद्यार्थी को बुला करके, कहते देखो पास हो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यह स्थिति है, संस्कृत की ठीक ठीक परीक्षाएं होने लग जाएं तो ये बड़े बड़े विद्यालय खुले सब खत्म हो जाएं, सब बंद हो जाएंगे, इनका परीक्षा फल ठीक नहीं आएगा। ये स्थिति है और इस स्थिति में श्रीमद् भागवत की भी यही अवस्था है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, और इसमें भागवत के वक्ता इतने अधिक हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। जन्माद्यस्य को कहते जन्माद्यस्य, बोले और तो सब समझ में आ गया, बस यही समझ में जन्माद्यस्य क्या है। सच्ची बात है, एक भागवत के वक्ता हमारे गुरुजी के पास आए, बहुत अच्छे विद्वान हैं, उनके पास आए आकर के उन्होंने कहा गुरुजी वैसे तो हम बहुत बढ़िया कथा बांचे आपकी कृपा से, पर एक मंगलाचरण में एक जगह अटक रहे हैं, उसका थोड़ा सा अर्थ आप समझा दीजिए। कहा कौन सा मंगलाचरण। बोले कस्तूरी तिलकम लला टपटले, कस्तूरी तिलकम लला, लला के मस्तक पर कस्तूरी का तिलक है, ये टपटले का अर्थ क्या है। और कोई बनावटी ढंग से नहीं, उन्होंने सहज ढंग से कहा कस्तूरी तिलकम लला, लला के मस्तक पर कस्तूरी को तिलक है, ये टपटले क्या चीज है। तो उन्होंने कहा भैया पंडित जी कथा तो बांसते हो, टपटले नहीं है, ललाट पटले, ललाट के पटल पर कस्तूरी का। अच्छा गुरुजी अब समझ में आया। ऐसी अवस्था में यदि सनातन धर्म के रहस्य को समझना होवे, श्री रामकृष्ण के चरित्र को समझना होवे, तब क्या करे। बोले कली कुटिल जीव निस्तारहित बाल्मीकि तुलसी है। इसीलिए वे महापुरुष जानते हैं कि घोर कलिकाल में संस्कृत भाषा की ये दशा हो जाएगी और उस काल में लोग कैसे सनातन धर्म के सिद्धांतों को समझेंगे जो अत्यंत क्लिष्ट हैं। तब इसी भाव ने महर्षि वाल्मीकि को गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होने के लिए बाध्य कर दिया। कलिकुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी। भविष्य पुराण का श्लोक है, वाल्मीकि तुलसीदासः कलौ खलु भविष्यति रामचंद्र कथाम साध्वीं भाषा रूपाम करिष्यति। कलिकाल में महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे और भाषा ग्रंथ के रूप में रामचरितमानस की रचना करेंगे। ऐसे कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। भैया, कलि के कुटिल जीवों का निस्तार इसी में है कि वे कुटिलता का त्याग करें, और कुटिलता का त्याग और जीवन में सहजता सरलता आना ये बिना राम जी के चरित्र के आश्रय के संभव नहीं है। राम जी के चरित्र का आश्रय लिया जाए, आज बहुत आवश्यकता है रामचरित्र के प्रचार प्रसार की, बहुत आवश्यकता है। ईश्वर प्रसाद जी कह रहे थे, उनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी, कि आज रामायण की कथाएं और श्रीमद् वाल्मीकि की कथाएं हो इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस की जो प्राचीन पद्धति कथाओं की थी उस पद्धति में भी बहुत बदलाव आ गया है। पहले पुराने वक्ता पंडित लोग 99 के क्रम से सभी प्रसंगों को कह जाते हैं, अब तो एक चौपाई दो चौपाई उसी में बस चर्चा होती रहती खींचतान के। अच्छी बात है, वो भी बढ़िया ही है, होना चाहिए, लेकिन वस्तुतः जीवों को जो लाभ मिलता है वो चरित्र से मिलता है। राम जी के चरित्र का अनुसंधान करेगा तो सरलता आ जाएगी। कैसी सहजता सरलता है, पुष्पवाटिका में किशोरी जी का दर्शन हुआ है, गुरु जी ने पूछा नहीं कि क्यों विलंब हो गया, पर बिना पूछे ही गुरु जी के चरणों में निवेदन कर दिया, गुरुदेव इस कारण से आज आने में विलंब हुआ। और राम जी की सरलता को देख करके विश्वामित्री जी का हृदय भर आया।
सुफल मनोरथ हो सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे।
अब देखिए, अब ये कोई बताने की बात थी, पर अपने मन की बात लक्ष्मण जी से भी कह दी और गुरु जी से भी कह दी। मानो राम जी ने कहा, इस तरह की सरलता का व्यवहार गुरुजनों के चरणों में रहकर होगा तो कोई ऐसा मनोरथ नहीं है जो विफल हो, सब सफल हो जाएंगे। साधुता क्या है, सरलता, और दुष्टता क्या है, कुटिलता है। और ये जी दुष्ट कुष्ठता कुटिलता हमारे जीवन में है, छल कपट छिपाव दुराव हमारे जीवन में है, तो विफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। इसलिए ये सरलता जीवन में आवे इसके लिए आवश्यक है श्री रामचरित्र का प्रणयन, और वे कलि के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हो गए। वर्णन मिलता है कि एक बार तथा रस के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज ने दीर्घ काल तक महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत विविध रामायणों का रसास्वादन करते हुए यह विचार किया कि महर्षि ने इतना मंजुल श्री रामचरित्र लिखा है तो सुनते तो हम है ही हैं, हम भी रामचरित्र लिखें। रामचरित्र श्रवण की प्रेरणा भगवान ने स्वयं ही दी हनुमान जी को। ये कथा किस ग्रंथ की है ये तो हमें स्मरण में नहीं है, पर पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी के मुख से सुनी हुई कथा है। वे महापुरुष कभी कोई अप्रामाणिक बात नहीं कहते थे। हम पूछ नहीं सके किस ग्रंथ की ये बात है, पर बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। हनुमान जी रामचरित्र श्रवण के, रामचरित सुनवे के रसिया हनुमान जी कैसे बने? एक बार की बात है, श्री ठाकुर जी ने अयोध्या जी में श्री हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान जी आप सेवा तो अहर्निश करते हैं, कभी कभी कथा भी सुना करो। हनुमान जी ने कहा, सरकार आपकी आज्ञा सेवक को सिरोधार्य है, पर मैं निवेदन करूं भगवान, सबका फल तो आपकी प्राप्ति है, आपके चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति है, वो तो इस दास को आपकी कृपा से हो ही रही है, तो अब आप इस नए साधन में हमको प्रवृत्त क्यों करना चाहते हैं? राम जी ने कहा, हनुमान जी कथा सुनने से बहुत लाभ है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान वे इस सेवक ने आपके चरित्र अपने नेत्रों से देखे हैं, उन्हीं में मैं रमण करता रहता हूं, किंतु आप प्रेरित कर रहे हैं तो ठीक है, पर आप ये बतावे कि मैं कथा कहां जाकर सुनूं? राम जी समझ गए कि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, इसलिए वे कह रहे हैं कि मैं कहां कथा सुनूं जाकर, हमको कथा सुनाने वाला व्यास कहां मिलेगा? अरे बहुत विद्वान पढ़े लिखे लोग सबकी कथा में जाके नहीं बैठते, ये तो सामान्य लोगों की बात है, पर हनुमान जी तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी बोले, हम किससे जाके कथा सुने? राम जी बोले, हम पता बताते हैं, नीलगिरी पर रोज कथा होती है, कागभुसुंडी जी महाराज कथा सुनाते हैं, भगवान शंकर भी कभी कभी हंस का रूप धारण करके कथा सुनने जाते हैं, सो वहां जाकर तुम कथा सुनो। बोले ठीक है महाराज, सेवा के अतिरिक्त समय में कथा सुन सकता हूं? बोले हाँ ठीक है, हम राजभोग के बाद शयन कर जाते हैं और उत्थापन होने के पहले पहले तक बीच का जो समय है उसमें आप जाकर कथा सुनाया करो। बोले ठीक है। हनुमान जी तो मनोजवम है, हनुमान जी चले गए, एक क्षण में नीलगिरी पहुंच गए, वहां कागभुसुंड जी कथा कह रहे थे और सौभाग्य से वही कथा कह रहे थे जिसमें हनुमान जी की प्रधानता है कि जब हनुमान जी महाराज जानकी माता की सुधि लेने का विचार करने लगे, पर्वताकार हनुमान जी हो गए, तो हनुमान जी ने एक डग में समुद्र पार कर लिया। एक चरण तो समुद्र के इस पार था और दूसरा डग रखा तो उस पार हो गया, उड़ना नहीं पड़ा, उछल कूद नहीं करनी पड़ी, एक डग में समुद्र पार करे गोवत्स पद की तरह। वहां हनुमान जी गए तो जानकी जी को प्रणाम किया, जानकी जी की सुध ली, और राक्षसों के अत्याचार को देखकर बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी ने क्या एक फुफकार लगाई और पूरे लंका धू धू करके जलने लगी, और रावण के बल को धर्षित करके हनुमान जी उसी समय जानकी जी को प्रणाम करके चूड़ामणि लेकर के राम जी के चरणों में आ गए। एक डग यहां रखी, दूसरी डग राम जी के चरणों। हनुमान जी ने विचार किया, ये वक्ता लोग अपनी कथा को बढ़िया बनाने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देते, देखो समुद्र लांघने वाले तो सामने बैठे हैं, भेष बदल के हनुमान जी बैठे, हमको पता है कितनी उड़ान भरनी पड़ी, बीच बीच में किन से टक्कर लेनी पड़ी, फिर लंकनी से भी टक्कर लेनी पड़ी, और फिर हमारी पूछ में वस्त्र लपेटा गया, घी तेल सब कपूर बांधा गया, फिर आग लगाई गई, ये सब। और ये कहते हैं एक फूंक से लंका जला दी, अब बोल तो सकते नहीं, चलो कोई बात नहीं, प्रणाम करके हनुमान जी चले आए। राम जी ने कहा कहो हनुमान जी कथा। बोले हाँ महाराज सुनाया कथा। कैसे ढीले ढाले बोल रहे हो? हाँ महाराज सुनाया कथा, आपने भेजा था, जाना तो था ही, आपकी आज्ञा थी, आज्ञा थी, आपकी बात से पता चला, आप कथा सुनकर भी बहुत संतुष्ट नहीं। नहीं बोले महाराज, कथा तो आपकी बहुत अच्छी है, पर वो व्यास जी कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे। राम जी ने कहा ऐसा भाव हनुमान जी तुम्हारे चित्त में नहीं आना चाहिए। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांति मुनिसन गाए। हो सकता है काव्य सुंदर जी किसी अन्य कल्प की कथा कह रहे हों, पक्का जो कुछ कहे उसमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। राम जी हनुमान जी से चर्चा भी कर रहे थे और अपनी मुद्रिका अपनी उंगली से निकाल करके ऐसे उसको देख भी रहे थे। देखते देखते सहसा पता नहीं क्या हुआ, राम जी की हाथ से वो मुद्रिका नीचे गिर गई। राम जी ने कहा हनुमान जी उठाना हमारी मुद्रिका। अब हनुमान जी जैसे उठाने के लिए लपके तो वो और आगे भाग गई। हनुमान जी को बहुत यह भाव था कि कहां भाग के जाएगी, मेरा वेग बहुत तेज है, पर सारे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करा दी उस मुद्रिका ने, हनुमान जी पकड़ नहीं पाए। लेकिन हनुमान जी ने भी पीछा नहीं छोड़ा, अंत में वो मुद्रिका सुमेरु पर्वत की एक कंदरा में प्रविष्ट हो गई। हनुमान जी उस कंदरा में प्रवेश करने लगे तो वहां एक बहुत विशाल बलिष्ठ बानर मणिजटित आभूषण धारण किए हुए लंगोटा कसे हुए वहां खड़ा था। उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। हे कहां जा रहे हो? मैं द्वारपाल हूं, मुझसे बिना पीछे भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हो। हनुमान जी ने कहे बंदर पता है मैं कौन हूं? कौन है आप? बोले मैं श्री राम दूत पवन पुत्र हनुमान हूं। यह सुनते ही वो बानर ठहाका लगाकर हंसा और उसने कहा शर्म नहीं आती है, इतना कमजोर बंदर अपने को हनुमान बता रहा है। अरे हनुमान जी तो भीतर बैठे हैं। अब हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि हम हनुमान जी खड़े हैं, हमारे रहते हुए दूसरे हनुमान जी भीतर बैठे। बोले कहां है? बोले इसी के भीतर है, तो हम दर्शन कर सकते हैं? बोले उनकी आज्ञा हो जाए तब। बोले ठीक है आप आज्ञा लेकर आओ। वो बानर गया, उसने कहा महाराज एक बानर खड़ा है, देखने में तो दुर्बल सा लगता है, अपने अपना नाम हनुमान बताता है, कहता मैं राम जी का सेवक हूं, दूत हूं, अंगूठी लेने आया हूं, अंगूठी इसके भीतर प्रविष्ट भई है, आपकी क्या आज्ञा है? वो हनुमान जी बोले उनको अत्यंत आदर पूर्वक यहां लेके आ। वो बानर गया, बोले महाराज हमने कुछ अभद्र बात कह दी, उसके लिए आप क्षमा करें। हनुमान जी महाराज ने कहा उनको आदर पूर्वक लावें, आप पधारें। वहां गए तो वहां देखा मणिजटित सिंहासन है और वहां श्री हनुमान जी बैठे हैं, उनके रोम रोम से करोड़ों सूर्य की किरणें प्रकट हो रही है, बहुत दिव्य तेज, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है और हाथ में तुलसी की सुमरनी लेकर श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जप रहे। हनुमान जी ने कहा भाई वस्तुता ये हनुमान जी, हनुमान जी ने कहा वस्तुता ये हनुमान जी, उठ के खड़े हो गए। अब आश्चर्य होने लग गया कि दो हनुमान जी और इनका तेज बल ऐश्वर्य इनकी महिमा तो इतनी विलक्षण है कि मैं भी इनके आगे नतमस्तक हूं। आखिर ये स्वप्न है कि जागृत अवस्था है, आखिर ये हो क्या रहा है? हनुमान जी चकित से हो रहे थे। तब तक वो गुफा वाले हनुमान जी ने कहा, बोले हनुमान जी आप अपने मन में तनिक भी संदेह न करो, आप अंगूठी लेने आए हो, देखो इस कुंड में झांक कर देखो। तो कुंड में झांक कर देखा तो उस कुंड में हजारों लाखों की संख्या में मुद्रिकाएं पड़ी थी। बोले इसमें से जो आपकी अपनी हो वो ले जा, ये सब राम जी की ही मुद्रिका है। अब हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि एक मुद्रिका आई थी, यहां इतनी अंगूठियां कैसे इकट्ठी होगी। हनुमान जी ने पूछा, पहले ये रहस्य बताओ यहां इतनी मुद्रिका कैसे इकट्ठी हुई। बोले देखो हनुमान जी, जब जब श्री रघुनाथ जी हनुमान जी को राम कथा सुनने के लिए प्रेरित करते हैं तब तक यही अंगूठी वाली लीला करते हैं, और अंगूठी यहां आ जाती है और फिर हम वो अंगूठी इस कुंड में गिरते ही उसके युगल स्वरूप हो जाते, दो हो जाती, एक तो दे देते हैं एक यहां जमा हो जाती। तो इतनी बार तुम इस गुफा में आ चुके हो, इतनी बार श्री रामावतार हो चुका है, इतनी बार तुम गुफा में आ चुके हो, और अब एक बात और ध्यान से सुन लो, आपको भगवान श्री राम ने नीलगिरी पर्वत पर कथा सुनने भेजा था, यहां भेजा था, वहां आपने क्या कथा में सुना? हनुमान जी ने सुना दिया कि एक डग में समुद्र पार कर गए और एक फूंक में लंका जला दी। वो गुफा वाले हनुमान जी ने कहा, वो हमारी ही कथा वहां सुनाई जा रही थी, वो एक डग में समुद्र पार करने वाले और एक फूंक में लंका जलाने वाले हनुमान हम ही हैं। अब राम जी ने कह दिया, यहां बैठ के राम राम करो, इस वर्तमान कल्प में तुम हनुमान बनकर सेवा कर रहे हो, तत्वता हम में और तुम में भेद नहीं है, पर सेवक के भीतर भी कई बार अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं, और उन समस्त अभिमान जनित दोषों का शमन करने वाली प्रभु श्री राम की मंगलमयी कथा है। इसलिए हनुमान जी अब राम जी की सेवा में तो लगे ही रहो, पर निरंतर कथा सुनो, कथा सुनना बहुत जरूरी है। हनुमान जी बोले, अब हम प्रतिज्ञा करके जाते हैं, राम जी की सेवा में बड़ी एकाध दिन नागा हो जाए पर कथा सुनने में नागा नहीं होगी। हैं? जहां कहीं भगवान की कथा होगी, अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि किस व्यास की कथा सुने किसकी न सुने। कोई निरक्षर भट्टाचार्य भी राम कथा कहने बैठेगा तो दूसरे श्रोता आवे या न आवे, सबसे पहले हाजिरी हमारी होगी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम्। राम जी हनुमान जी इतने अनन्य प्रेमी कथा के हो गए कि राम जी अपने धाम को गए तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। यावत वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, यावत तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि देहेस्मिन् स्तवाद्या मनुपालयन्। जब तक आपकी त्रिभुवन पावनी मंगलमयी कथा इस धरती पर होती रहेगी हे नाथ, तब तक हम धरती छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। राम जी चाहते हैं हनुमान जी सदा धरती पर ही रहें, भक्तों का रक्षण करते रहें, इसलिए आर्ष्टिषेण नाम के गंधर्व राज को उनकी मंडली के सहित भगवान ने नियुक्त कर रखा है। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी राम जी के चरणों की सेवा करते रहते हैं, और आर्ष्टिषेण गंधर्व राज वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजाते हुए राम जी के मंगलमय चरित्र का गायन करते रहते हैं, हनुमान जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु झरते रहते हैं, और वे 24 घंटे कथा सुनते रहते हैं। वहां हनुमान जी का आहार अन्न जल नहीं है, हनुमान जी राम चरित्र सुनकर के ही अपने प्राण धारण करते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आज तक हनुमान जी सुनवे को रसिया थे, आज लिखवे को रसिया। आज हनुमान जी ने विचार किया कि मैं बहुत दिनों से राम कथा सुन रहा हूं, मैं भी श्री राम जी के मंगलमय चरित्र का लेखन करूं। श्री हनुमान जी महाराज राम चरित्र का लेखन करने लग गए। महाराज जी बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़ी बड़ी शिलाएं उनको हनुमान जी उठाते और उठा करके अपनी गोद में रखते और अपने वज्रतुल्य नखों से उन शिलाओं पर ही रामचरित्र उत्कीर्ण करते, अंकित कर देते, नखों से चिन्ह बना करके रामचरित्र खोद देते, लिख देते और लिख करके वो शिलाएं इकट्ठी करते। महाराज हनुमान जी ने बहुत लिख डाला, बहुत शिलाएं इकट्ठी होती। उन सब शिलाओं को देखकर हनुमान जी आनंदित हो उठे, बहुत प्रसन्न हुए श्री हनुमान जी महाराज, आनंदित हो उठे। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि लिख तो गया है राम जी की कृपा से राम जी का चरित्र, वो भी नाटक की शैली में लिखा गया। हनुमान जी ने जो चरित्र लिखा वो नाटक की शैली में लिखा। नाटक की जो शैली होती है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है और ज्यादा लोगों को आकर्षित करने वाली होती है। हम लोग गद्य के रूप में कोई चीज सुनते हैं उसका जितना प्रभाव नहीं होता जितना कोई दृश्य के रूप में हम देखते हैं, नाटक के रूप में देखते हैं तो उसका चित्र पर प्रभाव ज्यादा होता है। नाटक जो है वो दर्शक के भीतर बार बार उत्सुकता को जागृत करता है, जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। तो हनुमान जी ने यह विचार किया कि नाटक की शैली में जब राम जी का चरित्र लिखेंगे तो लोग खूब उस नाटक को करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, उनकी उत्सुकता बढ़ेगी और सहज ही जीव भव सागर से पार उतर जाएंगे। इस लक्ष्य को लेकर हनुमान जी ने हनुमान नाटक लिखा। हनुमान जी के लिखे हुए चरित्र का नाम क्या है? हनुमान नाटक। अब इसको प्रमाणित भी कराऊं, किसी महात्मा की छाप लग जाए, उनकी दृष्टि पथ से ये हमारी रचना गुजर जाए तो यह प्रामाणिक हो जाएगी। वैसे महापुरुषों के सारे भाव प्रामाणिक ही होते हैं, पर यह मर्यादा है, अपने से बड़ों के पास जाकर निवेदन जरूर करना चाहिए, वे एक बार देख लें, छू दें तो बस बात पूरी होगी, पक्की होगी, उसमें प्रामाणिकता आ जाती है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी को, मामा जी को हमने देखा, कोई भी रचना लिखते तो जब वृंदावन सुदामा कुटी में रामानंद जयंती में जाते तो थोड़ा थोड़ा समय निकालकर महाराज जी के पास बैठते और अपनी नई नई रचनाओं को महाराज जी को दिखा देते। पांडुलिपि महाराज जी एक बार, उसमें कोई संशोधन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, महाराज जी एक बार उलट पलट के देख लेते। सरकार बालक की तुकबंदी है, इसमें कुछ परिवर्तन परिवर्धन करना हो, महाराज जी कहते नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कभी कभी बता भी देते थे कि हाँ ये भाव और इसमें सम्मिलित करना चाहिए, बड़े प्रसन्न होते। ये मर्यादा, उसी मर्यादा का पालन करते हुए गोस्वामी श्री श्री हनुमान जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने जैसे ही हनुमान जी की इन रचनाओं को देखा तो भाव विभोर होकर के महर्षि वाल्मीकि नृत्य करने लगे। वाह वाह वाह, धन्य है, धन्य है गोस्वामी जी, इतनी सुंदर आपकी रचनाएं, धन्य है, धन्य है गोस्वामी, श्री हनुमान जी महाराज इतनी सुंदर आपकी रचनाएं, हृदय आनंद से भर गया, हृदय आनंद से भर गया। क्या करें, देखो हमने कल भी निवेदन किया था और आज पुनः हम निवेदन कर रहे हैं, महापुरुषों के जीवन में जो कुछ घटित होता है वह लोक कल्याण के लिए होता है और वह किसी कर्म अथवा किसी विकार से जन नहीं होता, वो भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा से होता है। जिन महर्षि का एक एक अक्षर महापातक नाशनम है, महापापों को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण विकारों को समाप्त कर देने वाला है, उन महर्षि के चित्त में मात्सर्य का भाव आवे, ईर्ष्या का भाव आवे, ये संभव है क्या? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अब ब्रह्म समान हो गए तो ब्रह्म तो निर्विकार है, तो उसमें विकार कहां से आएगा? पर सहज सर्वज्ञ प्रभु श्री राम, करुणा वरुणालय श्री राम जी चाहते हैं कि वाल्मीकि जी का गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार हो। तो अवतार का कुछ न कुछ कारण तो बनेगा, क्योंकि कारणाभावे कार्याभावा, कारण ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा। तो वाल्मीकि को तुलसीदास जी के रूप में प्रकट कराने के लिए राम जी ने अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया, जनमोहनी माया का विस्तार किया और उस माया में अपनी कृपा से महर्षि को मोहित कर लिया। देखो भगवान की माया के तीन भेद हैं, भगवान की माया के तीन भेद हैं। एक माया है त्रिगुणात्मिका जड़ माया, इस माया के तीन गुण हैं सत्व रज और तम। इस त्रिगुणात्मिका माया में सारा जगत मोहित हो रहा है, कीट पतंग पर्यंत देवता असुर सुर मनुष्य पशु पक्षी सब मोहित हो रहे हैं। इस त्रिगुणात्मिका माया से जो ऊपर उठ जाने वाले भगवान के प्यारे भक्त हैं, रसिक जन हैं, प्रेमी जन हैं, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं माया से मुक्त महात्माओं को मुक्तात्मा कहा जाता है। उन मुक्तात्माओं के साथ भगवान को खेलने की इच्छा होती है, क्योंकि बंधे हुए जीव के साथ भगवान की क्रीड़ा संभव नहीं है। हमारे हाथ पैर बंधे हैं, आपके भी बंधे हैं, तो खेल होगा? क्रीड़ा के लिए दोनों खेलने वालों का मुक्त होना अनिवार्य है। भगवान तो स्वभाव से ही मुक्त हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और जीव बंधन में है, अविद्या माया के बंधन में है। तो जब तक माया के बंधन में जीव रहता है तब तक भगवान उसके साथ खेलते हैं, और जब वो भगवान की भक्ति करके उपासना करके माया से ऊपर उठ गया, मुक्तात्मा हो गया, तब भगवान को उसके साथ खेलने की इच्छा होती है, और फिर खेल बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि उस भक्त के भीतर, उस मुक्तात्मा के भीतर जो भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया है, वह ऐश्वर्य का ज्ञान बाधक बन जाता है, खेल में बाधक बन जाता है। ऐश्वर्य का ज्ञान जहां हो जाएगा वहां खेल नहीं होगा। एक सत्य घटना सुनावे है तो लौकिक घटना। एक गांव के निकट एक नदी है, जामुनी नाम है उस नदी का, बेतवा में मिलती है, ओरछा क्षेत्र की बात है। तो नदी में जल बहुत रहता है, बाढ़ थी और डोंगी चलती, छोटी डोंगी, बड़ी नौका नहीं, छोटी डोंगी, पत्थर वाली नदी, बड़ी नौका चल नहीं सकती, छोटी डोंगी चलती। और डोंगी में एक खेने वाला और एक बैठने वाला, बस दो ही आदमी पार हो सकते, زیادہ لوگ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ ندی میں جل بہت تھا. اب پار اترنے والے دو لوگ تھے, ایک نائی تھا اور ایک ٹھاکر تھا. نائی تو خوب تگڑا تھا, ہشٹ پشٹ تھا, اور جو ٹھاکر صاحب تھے وہ ایک دم دبلے پتلے تھے, سینکیا پہلوان, دبلے پتلے تھے بیچارے. اب وہ ٹھاکر کہے کہ کھینے والے سے کہ ہم کو پار کرو, اور وہ نائی کہے کہ نہیں ہمیں جانا زیادہ ضروری ہے, ہم کو پار کرو. تو اس ملاح نے کہا, کھینے والے نے, نوکا چلانے والے نے کہا, ایسا کرو ہم تو نوکر آدمی کسی کو بھی پار کر دیں گے, تم دونوں پہلے لڑ بھڑ کر فیصلہ کر لو کس کو ہم لے چلیں. سو دونوں میں بات بات میں اتنی کہا سنی ہو گئی کہ وہ نائی تو نائی تھا, مضبوط تھا, اس نے اٹھا کر اس کو پٹک دیا ٹھاکر کو, اس کی چھاتی پر چڑھ گیا, گھٹنا رکھ کر گیا, بولا اب بول تو پار اترے گا کہ میں. اس نے کہا اچھا تیری اتنی ہمت, تو مجھے جانتا نہیں, میں امک گاؤں کا ٹھاکر ہوں. وہ نائی وستوتا نہیں جانتا تھا یہ کون آدمی. اس نے کہا میں امک گاؤں کا ٹھاکر ہوں, ابھی تو کچھ نہیں, ابھی تو پار اتر جا, پھر میں تیری خبر لوں گا بڑھیا سے. سو جیسے ہی اس نے امک گاؤں کا میں امک نام کا ٹھاکر ہوں نام بتایا, تو اس کا نام اور گام سن کر اس نائی کو اس ٹھاکر کے ایشوریہ کا گیان ہو گیا. تو اس نائی نے کیا کیا, وہ پہلے تو اوپر چڑھا تھا, اس کو نیچے لیے تھا, اور ترت الٹ کر کے اس نے ٹھاکر کو اوپر کر دیا, اور بڑی جور سے کہا انن داتا مائی باپ ٹھاکر صاحب بچاؤ بچاؤ, میں غریب آدمی ناؤ آدمی, میں ہار گیا, آپ اتر جاؤ پاپ. ستیہ گھٹنا ہے ایک گاؤں کی. جب تک ایشوری کا گیان نہیں تھا اس ٹھاکر کے کہ امک گاؤں کا اتنا پرتشٹھت چلاوا والا ٹھاکر ہے, تب تک تو اس کو اوپر چڑھا تھا, اور جب اس کو پتا چلے گا کہ میں غریب نائی ہوں اور یہ تو زمیندار ٹھاکر ہے, پتا نہیں ہماری چمڑی نکلوا لے گا, سوئی وہ الٹ کر نیچے گر گیا اور ٹھاکر کو اوپر لے لیا, اور کہنے لگا بھیا بچاؤ بچاؤ ٹھاکر صاحب ان داتا مائی باپ معاف کرو. یہ ایشوری گیان کی بات ہے, یہ تو سامانیہ گھٹنا کی بات ہے. انت کوٹ برہمانڈ نائک سرویشور پراتپر پربرہم بھگوان, ان کے اچنتی انت ایشوریہ کا گیان ہو جائے, ان کی مہیما کا گیان ہو جائے, تو پھر بھلا کس جیو میں سامرتھ ہے جو بھگوان کے ساتھ کھیل سکے. وہ ٹھاکر جی اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, اب کیسے کھیلو. تب ہمارے ٹھاکر جی ماکھن چور ہی نہیں ہیں مہاراج, اس مکتاتما کے ایشوریہ گیان کی بھی ٹھاکر جی چوری کر لیتے ہیں, اور جیسے ہی اس کے گیان کی چوری کر لیتے ہیں پھر وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ یہ بھگوان ہے, پھر ان کو اپنا سکھا مان کر ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے. اس جنموہنی مایا کے دوارا جیو کا کچھ انشٹ نہیں ہوتا, اپیتو بھگوان کی رسمئی پریممئی لیلاؤں کا وستار ہوتا ہے اور بھکتی کا وستار ہوتا ہے, بھگوان کو بھی سکھ ملتا ہے, بھکت کو بھی سکھ ملتا ہے, اور ان لیلاؤں کو کہنے سننے والوں کو بھی سکھ ملتا ہے. اس لیے یہ مایا کوئی سامانیہ مایا نہیں, یہ ویشنوی مایا ہے. اس ویشنوی مایا میں موہت کرا کے ہی بھگوان سنکادکوں سے جے بجے کو شاپ دلاتے ہیں, اسی ویشنوی مایا میں موہت کرا کے بھگوان نارد جی کے دوارا ساپ پراپت کرتے ہیں, کل کی لیلا میں آپ نے دیکھا. اسی جنموہنی مایا کے دوارا آج ٹھاکر جی مہرشی والمیکی کی گوسوامی تلسی داس جی کے روپ میں پرکٹ ہونے کی ویوستھا بنا رہے ہیں. اس لیے مہرشی میں ماتسری آ گیا, یہ مایا کا ماتسری نہیں ہے, یہ بھگوان کی لیلا ہے. مہرشی نے وچار کیا ہنمان جی کی رچنا تو اتنی دیویہ ہے, اتنی دیویہ ہے کہ اس کا کہیں دھرتی پر پرچار ہو گیا تو ہماری رامائن تو ویشٹن میں بند ہو کر براجمان رکھی رہ جائے گی, اس کا پرچار تو شاید اس کے آگے دھومل پڑ جائے گا. हमारी कृति महत्वहीन हो जाएगी, तब क्या करें? ये मन में आई उनके बाद, तो उन्होंने कहा, हनुमान जी आपका ग्रंथ तो बहुत ही दिव्य है, आपने तो मंगलाचरण ही ऐसा किया है, इस मंगलाचरण को पढ़कर के मेरा रोम रोम पुलकित हो गया।